أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحسين عليه السلام: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمتي جدي. امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں اپنے جد نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں. ماہ محرم الحرام، ماہ سوگ و ماہ قیام، ماہ اثار و فداکاری، ماہ رنج و ملال، ماہ تحفظ دین، ماہ دفاع حرمت دین، ماہ عزاداری، تمام ملت اسلامیہ بالخصوص تمام مومنین و مومنات، علماء کرام، مراجع الزام و تمام رہروان راہ ولایت و امامت کی عرض میں تعزیت و تسلیت عرض ہے. ناظرین، ماہ محرم الحرام کے حوالے سے خصوصی نشریات کا یہ سلسلہ جاری ہے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا نجم الحسن نقوی صاحب، جو کہ پچھلے دو پروگرامز میں ہمارے ساتھ شرکت کر چکے ہیں، مجلس علماء شیعہ یورپ کے سیکرٹری تبلیغات کے فرائض انجام دے رہے ہیں. ہم ان سے گفتگو کا سلسلہ اس پروگرام میں بھی جاری رکھیں گے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں مقصد قیام امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کی، اور اس میں ہم نے کافی حد تک یہ ذکر کرنے کی کوشش کی کہ کس طرح امام حسین علیہ السلام نے اپنی قربانی کے نتیجے میں خدا تعالیٰ کے خالص دین کو بچانے کی کوشش کی، اور توحید کا جو اصل مقصد، توحید کا جو اصل پیغام ہے، اس کو کس طریقے سے انہوں نے علیحدہ اس کو پہنچانے کی کوشش کی. تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کے علاوہ، توحید کے علاوہ جو عقائد ہیں جس میں امام حسین علیہ السلام نے اس قربانی کے ذریعے امت کو کچھ پیغامات دینے کی کوشش کی، ہم کوشش کریں گے کہ مولانا سے وہ بھی جاننے کی کوشش کریں. مولانا، سب سے پہلا سوال، جس طرح ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی ذکر کیا کہ امام نے جو اپنی قربانی کا مقصد، جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا کہ خدا تعالیٰ کی معرفت اور توحید سب سے جو یہ غالب جو ہے وہ موضوع رہا، تو اس حوالے سے جو مختلف واضح جو باقی عقائد تھے، اس حوالے سے امام حسین علیہ السلام امت کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے عرض کیا امام علیہ السلام کی ایک حدیث سے اس کا ایک حصہ جو ہے وہ رہ گیا. الا ترون الحق لا يعمل به والباطل لا يتناهى عنه لیرغب المؤمن فی لقاء اللہ محقاً. بہت ہی خوبصورت فرمانے کہ فرمایا دیکھ نہیں رہے کہ تم حق جو ہے وہ اس پہ عمل نہیں ہو رہا، اور باطل جو ہے اس سے منع نہیں کیا جا رہا، تاکہ مؤمن خدا کا حقیقتاً لقاء اس کو میسر آئے، مؤمن کو خدا کی ملاقات میسر آئے. یعنی مؤمن خدا کا قرب کب حاصل کرتا ہے؟ جب حق پہ عمل ہو اور باطل سے دوری اختیار کی جائے. یہ وہ میسج کی روح ہے، ایک بات. دوسرا نقطہ بڑا اہم ہے، جب ہم کہتے ہیں نا عقائد، تو کڑی سے کڑی جڑی ہوئی ہے، پیوست ہے، متصل ہے. یہ بات بڑی اہم ہے کہ پہلا مرحلہ ظاہر ہے کہ اس کائنات کا خالق اللہ ہے، اپنی ذات میں یکتا ہے، اپنی ذات میں واحد ہے، اور ساری کائنات کا بنانے والا ہے، ساری کائنات کا رب ہے، پروردگار ہے. اگلے مرحلے میں اللہ کی توحید کے اقرار کے بعد جس بات کا اقرار کرنا ہے وہ رسالت کا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ توحید کا اقرار کر لیا تو آپ رسالت سے بے نیاز ہو گئے، کافی ہے خالی لا الہ الا اللہ کہہ دیا کافی ہے. نہیں، لا الہ الا اللہ کی حقیقت اس وقت سمجھ میں آئے گی جب محمد الرسول اللہ کا اقرار کرو گے. یہ بات بڑی اہم ہے.
بالکل.
یعنی عقائد جو ہیں، جو بنیادی عقائد کا ڈھانچہ ہے دین کا، پیوست ہے، متصل ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، علیحدہ نہیں ہے. علیحدہ سے خالی لا الہ الا اللہ کہنے سے دین کی حقیقت نظر نہیں آتی، اور نہ ہی انسان اس پہ عمل پیرا ہو سکتا ہے. ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگلا جو کچھ ہے اس کی حقیقت اللہ ہی ہے. खुदा ही कादिर है, खुदा ही हाकिम है, खुदा बंदे आलम ही बनाने वाला है और एजेंडा भी उसी का है। अच्छा, अब जब कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, तो अब ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के बाद अल्लाह ने हम इंसानों के लिए एजेंडा क्या दिया है? अब वो सिलसिला हिदायत का है। यानी ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद अगला मरहला मोहम्मद रसूलुल्लाह है। अच्छा, इस तरह भी है कि आप मोहम्मद रसूलुल्लाह का माना यह है कि आप किसी अल्लाह पे ईमान लेकर आए हैं ताकि मोहम्मद रसूलुल्लाह पे ईमान लाएं। यानी इधर से ये सिलसिला ऊपर जुड़ा हुआ है और ऊपर से ये सिलसिला नीचे की तरफ मुत्तसिल है।
अहसन,
और आगे फिर चलें, आगे जो हम आइम्मा की विलायत के कायल हैं, अली वलीउल्लाह के जो कायल हैं, वसी रसूलुल्लाह के जो कायल हैं, अली वलीउल्लाह, यानी इससे पहले ज़रूरी है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का कायल हो, ला इलाहा इल्लल्लाह का कायल हो। ये फिर सिलसिला विलायत जो मुत्तसिल है, जुदा नहीं है, हरगिज़ ये नहीं हो सकता। लिहाजा जब अली वलीउल्लाह कहा तो इसका मतलब है अल्लाह की तौहीद का इकरार है, और उसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार है, उसके बाद इमाम की विलायत का इकरार है। खूब, अगली बात मैं करूँगा अर्ज़, वो क्या है? जब ये कायल हो गए कि अल्लाह की वहदानियत के कायल हो गए, नबी अकरम की ख़त्म नबुव्वत के और उनकी रिसालत के कायल हो गए, अली और आपकी औलाद की इमामत के कायल हो गए, अब ज़रूरी है कि उस एजेंडे के कायल हो जाएं जो ये लेकर आए हैं। अगर उस एजेंडे पे अमल नहीं हो रहा तो इसका मतलब है दर हकीकत हम रिसालत के कायल ही नहीं हैं, दर हकीकत हम खुदावंद आलम के कायल ही नहीं हैं। अल्लाह की तौहीद के इकरार का माना यह है कि अल्लाह के प्रोग्राम पे अमल करो। कौन? उस प्रोग्राम पे जो के पैगंबर लेकर आए हैं, और आइम्मा की जिम्मेदारी है कि उस प्रोग्राम को नाफिज करें। ठीक है जी।
बिल्कुल,
अब जब ये बात यहाँ पे आ गई तो आपने देखा कि किस तरह सिलसिला जुड़ा हुआ है एक दूसरे के साथ। अली वलीउल्लाह वसी रसूलुल्लाह का कायल का माना यह है कि रसूलुल्लाह का कायल हो, रसूलुल्लाह का कायल का माना यह है कि वहदानियत का कायल हो।
कायल हो।
जब इस कड़ी का, इस सिस्टम का कायल हो जाए तो ज़रूरी है, लाबुद है, यकीनी है, हतमी है, फितरी है कि उस एजेंडे पे अमल करे, उस प्रोग्राम पे अमल करे, उस ज़ाबता हयात पे अमल करे जो यहाँ से मिलता है, जो अल्लाह अल्लाह के रसूल और आइम्मा ने दिया है। अब यहाँ पे सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम ही के ज़ुबान मुबारक से मैं एक बात अर्ज़ करूँगा। इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नक तअलम अन्नहु लम यकुनल्लज़ी काना मिन्ना मुनाफ़िसतन फ़ी सुल्तान वला इल्तिमास शैइन मिन फ़ुवूलिल हुताम। अल्लाहु अकबर। अच्छा जी, ऐ परवरदिगार, फरमाते हैं परवरदिगार तू जानता है कि हमें को कुदरत की नहीं ख्वाहिश, हमें कोई हाकमियत की नहीं ख्वाहिश, हम कोई सल्तनत के तलबगार नहीं हैं, इसलिए कि हुसैन उस अली का बेटा है जिस अली ने जनाबे अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से क्या फरमाया था, अब्दुल्ला मेरे इस जूते की क्या कीमत है? फरमाया, मौला इसकी भी कोई कीमत है? फरमाया कि ये तुम्हारी सल्तनत मेरे इस जूते से पस्तर है। हुसैन उस अली का बेटा है, हम कुछ सल्तनत के ख्वाहिशमंद नहीं हैं। मैं इसको एक और जाविये से बयान करूँ, जिनको अल्लाह ने जन्नत जैसी सल्तनत अता की हो उनको इस दुनिया की सल्तनत का कोई ख्वाहिश है नहीं। हम कोई सल्तनत और कुदरत के ख्वाहिशमंद नहीं है, इसके बरक्स हम देखते हैं कि वो हुक्मरान, खसूसन जो उस ज़माने का था यजीद, उसने अपनी कुदरत तलबी, उसने इकतदार की शहवत के नतीजे में क्या जुल्म किया, शाहरगे रसूल को काट दिया।
अल्लाह
हुसैन का कत्ल शाहरगे रसूल का ज़िबह करना है, का काटना है, हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन के मफहूम का कत्ल है। छोटा वाक्य है, किसकी खातिर? दुनिया के चंद रोज़ा इकतदार की खातिर, दुनिया के चंद रोज़ा इकतदार की शहवत की खातिर उसने इतना बड़ा तारीख का जुल्म जो है वो किया। अच्छा, फरमाया क्या है परवरदिगार तू जानता है कि हमें इख्तदार की ख्वाहिश नहीं है, हमको कुदरत तलब नहीं है, हमको रकाबत की ख्वाहिश नहीं रखते, वला इल्तिमास शैन मिन फजूल अलहुताम, और हमें दुनिया के मालो मनाल और जाह तलब नहीं है, हम दुनिया के मालो मनाल की ख्वाहिश नहीं है, दुनिया की फजूलियात के हम कायल, हम ख्वाहिशमंद नहीं हैं। हमारे क़याम का मकसद क्या है? वलाकिन ऐ अल्लाह, तू जानता है कि हम इसके ख्वाहिशमंद नहीं हैं, वलाकिन का व नजहर व नजहरुल इस्लाह फी बिलाद का फैया अमरुल मज़लूम मिन अबाद का व तकामल मुअत्तला मिन हुदूद का। बहुत ही खूबसूरत चार पॉइंट बयान किए हैं इमाम ने। परवरदिगार, हमारा इरादा यह है कि तेरे दीन की राहें, तेरे दीन के निशान जाहिर हो जाएं। हम चाहते हैं कि तेरे दीन के जो मालिम हैं, जो निशानियां हैं, तेरा दीन वाज़े हो जाए, व नुज़हरुल इस्लाह फी बिलाद का, और हम तेरे शहरों में इस्लाह चाहते हैं। वही जो जुमला
बिल्कुल
सैयद शुहदा ने अपने उस वसीयतनामे में भी तहरीर फरमाया, हम शहरों में, हम ज़मीन पे इस्लाह चाहते हैं। अल्लाह अकबर। हम चाहते हैं दीन सरबुलंद हो, एक। हम चाहते हैं शहरों में, ज़मीन पे, आबादियों में इस्लाह हो जाए। और अगला काम जो है, हम चाहते हैं कि मज़लूम जो हैं उनको अमन मिल जाए। फ़या अमरुल मज़लूम, इसका मतलब है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिस सिस्टम से टाकरा था, ना तो इस्लाम के अलम बुलंद थे, ना ज़मीन पे इस्लाह बाकी थी, ना मज़लूम के हकूक महफूज थे, और चौथा जुमला व तकामुल मुअत्तला मिन हुदूदिक, और ना ही हुदूद इलाही नाफिज थी, हुदूद इलाही कायम नहीं थी। ये बात बड़ी अहम है
बिल्कुल
जी। अब ये वो एजेंडा है जिसको आप रिसालत कहते हैं, ये वो ज़िंदगी का ज़ाबिता है जो नहीं मौजूद था। लिहाजा बिल्कुल मैं फिर इस बात को दोहराऊंगा कि क़याम सैयद शुहदा का मतलब दीन की इन सारी हकीकतों का इहया था। ला इलाहा इल्लल्लाह अव्वल, मुहम्मद रसूलुल्लाह दो, अली वलील्लाह तीन, और आदाफ रिसालत।
बिल्कुल। इसके अलावा जिसका हमने जिक्र किया, ये अकायद के हवाले से तो एक बहस होगी, लेकिन आपने जो जिक्र किया कि उम्मत की इस्लाह, जद के उम्मत की इस्लाह, इसके अलावा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये भी फरमा रहे हैं कि अमर को मारूफ बनाकर पेश किया जा रहा है और मुनकर बनाकर पेश किया जा रहा है, मारूफ को और मुनकर को मारूफ बनाकर पेश किया जा रहा है, तो मैं अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर के लिए भी निकल रहा हूँ।
बड़ा खूबसूरत बात है। मैं इसको मेरी समझ के मुताबिक इसको यूँ मैं समझता हूँ, वो जो वसीयतनामे के जो अल्फाज जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, उसके आगाज़ में बहुत खूबसूरत है, उसके पैराग्राफ मुख्तलिफ हैं।
बिल्कुल
पहले पैराग्राफ में बुनियादी अकायद का इजहार है, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद के सिवा कोई रसूल नहीं है, और
नहीं
इस तरह क़यामत का मैं यकीन रखता हूँ। और उसके बाद इरशाद फरमाया, इन्नी लम अखरुज अशरन वला बतरा वला मुफसिदन वला जालिमा, मैं कोई शर फैलाने नहीं निकला। अल्लाह अकबर, कैसे मुमकिन है? लेकिन वाज़े किया है बिल्कुल दो टोक अपने प्रोग्राम के खतूत इमाम हुसैन ने बिल्कुल वाज़े बयान किए हैं, जिसमें कोई बात छुपी हुई नहीं है, कोई बात पोशीदा नहीं है कि किसी को समझ ना आए। इन्नी
बिल्कुल
लम अखरुज अशरन वला बतर, मैं शर फैलाने, फसाद फैलाने, जुल्म करने नहीं निकल रहा। वाज़े हो गई बात? इन्नमा मैं निकल रहा हूँ, खरज तो लतलब इस्लाह फी उम्मत जद्दी।
अल्लाहु अकबर।
मेरी समझ के मुताबिक यहाँ पे सैयद शुहदा के क़याम के पांच निकात अहम हैं। इसको यूं कहें कि क़याम सैयद शुहदा का 5 पॉइंट एजेंडा, वो क्या है? इन्नमा अरबी ज़ुबान में समझते हैं कि ये कलमा कलमा हसर है, यानी हुसैन का मकसद सिर्फ यही है, इसके अलावा कुछ और नहीं है।
नहीं
इन्नमा कलमा हसर है अरबी ज़ुबान में, یعنی سید الشہداء فرما رہے ہیں کہ میرے قیام کا مقصد یہ ہے، سمجھ لو، یعنی اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. کیا میرے خروج کا، قیام کا مقصد کیا ہے؟ لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں چاہتا ہوں اپنے جد بزرگوار کی امت کی اصلاح کروں. اس کا دوسرا رخ کیا ہے؟ میں امت کی نابودی نہیں چاہتا. اللہ اکبر،
اللہ
امام امت کی زندگی چاہتے ہیں، امام انسانوں کو زندہ کرنے کے لیے آیا ہے، اور یہ وہی ایجنڈا ہے جو رسول اکرم کا ہے، یہ وہی ایجنڈا ہے جو انبیاء کا ہے. انبیاء کس لیے آئے ہیں؟ انسانوں کو زندگی دینے آئے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، انا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. قرآن کی آیت ہے بڑی خوبصورت، اے ایمان والو، جب اللہ پکارے اور اللہ کا رسول پکارے تو اس پکار پہ لبیک کہو، استجیبو، سراپا اطاعت نظر آؤ. کیوں؟ لما یحییکم، اللہ بھی چاہتا ہے اور اللہ کا رسول چاہتا ہے تم زندہ ہو جاؤ. سبحان اللہ، قرآن کی آیت ہے.
بالکل
سید الشہداء کا ایجنڈا قرآن کے علاوہ کچھ نہیں ہے. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، کام مانا ہے، معنی یہ ہے کہ میں امت کو زندگی دینے چلا ہوں، میں چاہتا ہوں امت نابود نہ ہو. اس کا مطلب ہے اگر امت نے دین کی راہ کو چھوڑ دیا تو گویا نابود ہو جائے گی، دین کی شکل باقی رہے گی، ختم. اذانیں تو تھیں اس وقت بھی، لوگ حج تو کرتے تھے، لیکن کیسا دین تھا کہ نماز بھی پڑھ لی اور فاسق و فاجر کے سامنے جھک بھی گئے. دین یہ تو نہیں کہتا، یہ اصل پرابلم یہ تھی. ایک فاسق کی بیعت کرنے کا معنی یہ ہے کہ ایک فاسق و فاجر گناہگار کی امارت کو آپ نے قبول کیا تو کیا نماز ہے آپ کی؟ جی، نماز و روزہ اس وقت زندہ ہے جب آپ کا امیر کون ہو؟ وہ جو کہ قرآن و سنت سے آگاہ بھی ہے اور قرآن و سنت پہ عمل پیرا ہے، وہ امیر. لہذا یہ زندگی کیا ہے؟ در حقیقت یہ وہی زندگی ہے جو قرآن کی دعوت ہے. لہذا سید الشہداء کے قیام کا مقصد قرآنی دعوت دینا ہے ایک بار پھر، کہ میرے آبا و اجداد جو پیغام لے کر آئے تھے، اور وہ کیا تھا؟ وہ وہی تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ کی ولایت کے قائل ہو جو، اللہ نہیں چاہتا کہ ایمان والے ظلمتوں میں رہیں، ظلمتوں سے نکل جاؤ. اب کیا کیا ظلمت ہے؟ گناہ ظلمت ہے، جہالت ظلمت ہے، گمراہی ظلمت ہے، فاسق و فاجر کی حکومت ظلمت ہے، گناہ ظلمت ہے، کینہ حسد بغض ظلمت ہے، جھوٹ ظلمت ہے. یہ ظلمت کی مختلف شکلیں، ظلم کرنا ظلمت ہے، پسے ہوئے انسانوں کی دادرسی نہ کرنا یہ ظلمت ہے. امام حسین چاہتے ہیں کہ میرے جد کے دین اور ان کی تعلیمات کی طرف لوٹ آئے دوبارہ اسلامی معاشرہ. بابا، اگر فاسق و فاجر کی حکومت کو قبول ہی کرنا تھا تو پیغمبر نے قیام کیوں کیا؟ یہ بات سمجھنے والی تھی. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت
جدی،
میں جد کی امت کی اصلاح کے لیے آیا ہوں، امت کو نابود کرنے نہیں آیا. پس حسین کا ایجنڈا کیا ہے؟ اصلاح امت. پس حسینی کا ایجنڈا کیا ہونا چاہیے؟
وہی ایجنڈا ہونا چاہیے،
اصلاح امت، نہ کہ نابودی امت. لہذا غافل نہ ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے عمل سے امت نابود ہو جائے. اگر ہمارے کسی عمل سے امت نابود ہو جائے تو گویا ہمارا ایجنڈا اور امام کا ایجنڈا دو مختلف راستے ہیں. امام کا راستہ یہ ہے کہ امت بچ جائے، امت کی اصلاح ہو، वही जो अम्बिया का रास्ता है, वही जो अम्बिया जिसके लिए आए थे। तमाम तर आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ता नबी ख़ातम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके बाद भी इसी तरह।
बिल्कुल, यही गवाही हम जो है वो ज़ियारत वारसा में भी जो है वो पढ़ते हैं कि तमाम
ये कि
अम्बिया।
हुसैन अलैहिस्सलाम वारिस अम्बिया हैं, दर हकीकत अम्बिया की मिशन को बचाने वाली सैयद शहदा। और ये देखें सदियों से अजान जो है ये वही दावत है ना, और ये दावत दावत क्या है, ये दावत है हय्या अलल फलाह, यह दावत हय्या अलस सलाह, आओ मिल के इस्लाह करें, आओ मिल के फलाह कायम करें, आओ मिल के इंसानी और ऐसी सोसाइटी, इंसानी सोसाइटी तैयार करें जिसको तौहीदी सोसाइटी कहते हैं, जिसको डिवाइन सोसाइटी कहते हैं।
अल्लाह अकबर।
ये है असल दावत, ये है जो आज खाली लफ्ज़ रह गए हैं, दावत की हकीकत खो गई। बस हमारा एजेंडा किसके ताबे होना चाहिए, सैयद शहदा अलैहिस्सलाम के एजेंडे के। जो हुसैन से मोहब्बत करता है उसका एजेंडा वाज़े होना चाहिए, क्या कि हम उम्मत की इस्लाह चाहते हैं। और उम्मत में कौन कौन शामिल है, दायरे मुख्तलिफ हैं। पहला दायरा उम्मत इस्लामी है, फिर बड़ा दायरा इंसान है जी। इमाम की दावत तमाम तर उन इंसानों तक है जो या कलिमा पढ़ते हैं तो इस्लाम के दायरे में हैं, और जो बाहर हैं उन तक दीन की हक्कानियत की दावत है, दलील के साथ और मज़लूमियत के साथ। खूब, अगली बात, उरीद हो, मेरा इरादा यह है। किसका इरादा, हुसैन का। अब लफ्ज़ों पर गौर करें, उरीद हो, मैं ये चाहता हूँ, मेरा इरादा यह है। अन आमुर बिल मारूफ, मैं चाहता हूँ मारूफ का हुक्म दूँ। पहला पॉइंट क्या था, इस्लाह उम्मत।
इस्लाह उम्मत,
दूसरा नुक्ता क्या है, मारूफ फैल जाए, मारूफ की हुकूमत हो, नेकियों की हुकूमत हो। किसका इरादा है, हुसैन का।
हुसैन का।
तो हुसैनियों का इरादा क्या होना चाहिए, हुसैन के इरादे से मुख्तलिफ नहीं होना चाहिए। ताबे इरादा है हुसैन, यह है क़याम आशूरा की हकीकत। उरीदो, मेरा इरादा यह है, इरादा है हुसैन यह है। अन आमुर बिल मारूफ, मारूफ की हुकूमत हो, मारूफ का अम्र हो, मारूफ फैल जाए दुनिया के अंदर, नेकियां फैल जाएं, नेकियों की हुकूमत हो, नेकियों को फैलाओ, नेकियों की हाकमियत। अब ये चैप्टर वसी है, बहुत वसी है
बिल्कुल
जी, कि जब नेकियां हुक्मरान होंगी तो दीन की हकीकत लोगों पे वाज़े होगी। अब मैं इसको थोड़ा सा एक नुक्ता और अर्ज़ करता हूँ। अल्लाह ने फरमाया अकीम उस्सलात, नमाज कायम करो। नमाज कायम कब कब होती है, नमाज पढ़ना और है, नमाज कायम करना और है। नमाज कायम कब होती है, इन सलात तनहा अनिल फहशाय वल मुनकर,
मुनकर
नमाज रोकती है किससे, बुराई।
बेहया इसे।
इसका मतलब अगर बुराई भी हो और नमाज भी हो तो फिर नमाज कायम नहीं हुई। ये इमाम हुसैन की परेशानी ये थी, नमाज थी कायम नहीं थी,
अल्लाह
नमाज थी गुनाह भी था, नमाज थी फिस्क फजूर भी था। नमाज उस वक्त कायम होती है जब मुआशरा पूरे का पूरा मुआशरा अल्लाह की इबादत की तस्वीर नजर आए, अल्लाह की बंदगी की शक्ल इख्तियार कर ले। गुनाह भी हो और नमाज भी हो, इसका मतलब है नमाज कायम नहीं हुई। हुसैन चाहते हैं नमाज कायम हो। ये कब होगा, जब नेकियां कायम हो जाएंगी, आमुर बिल मारूफ, जब नेकियां कायम
कायम
हो
हो जाए।
जाएं, नेकियों की हुकूमत हो। अब बदबख्ती यह है हमारी सोसाइटी के अंदर, एक नुक्ते की तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ। लोग कहते हैं जी हमें क्या, जी हमें किसी से क्या लेना देना। दीन कहता है तुम्हें लेना देना है। हाँ, अल मोमिनून वल मोमिनात या अमरून बिल मारूफ व यनहौन अनिल मुनकर, अल मोमिनून वल मोमिनात बाज़ुहुम औलिया बाज़िन, साहिबान ईमान एक दूसरे के सरपरस्त हैं, एक दूसरे के मुआमलात से मरबूत हैं, ये थोड़ी है कि हमें क्या जी, दीन अगर हमें क्या होता तो फिर करबला ना होती।
लेकिन मेरे ख्याल में जो ये हमें क्या का जो सवाल निकलता है वो क्या आप ये नहीं समझते कुरानी तालीमात जो हैं इनसे दूरी
ज़ाहिर है,
करके।
मैं वही तो अर्ज़ कर, वही तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, अगर इमाम हुसैन कहते जी हमें क्या जी, तो आज दीन बचता? या अम्बिया मसलन इसी फिक्र के होते हैं, हमें क्या जी, ठीक है जी लोग जो मर्जी करें। नहीं, दीन कहता है आपको है, आप कहते हैं जी हमें क्या लगे, दीन
बिल्कुल
कहता है आपको लगे, अल्लाह करे लगे आपको। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊल, तुम में से हर आदमी जिम्मेदार है। व तवासो बिल हक व तवासो बिस सब्र, कहाँ जाएगा? ये थोड़ा कि खाली अपनी इसलाह करोगे, और तवासी बिल हक और तवासी बिस सब्र। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इसी व तवासो बिल हक व तवासो बिस सब्र के फलसफे को समझाने के लिए ये क्याम, ये उस क्याम के पीछे ये फिलासफी है जी। तो ये दो नुक्ते हो गए,
बिल्कुल, एक जद की उम्मत की इस्लाह
इस्लाह हो
और
गई
एक अमर बिल मारूफ,
अगर जो
और
मरबूत हैं,
बिल्कुल
इसमें कोई शक नहीं। अगला क्या है? अनहा अनिल मुनकर, मैं चाहता हूँ बुराई ना रहे, बुराई का खात्मा हो जाए, बुराई को इरेडिकेट कर दिया जाए। ये तीसरा नुक्ता है उस एजेंडे का, बुराई न रहे। खूब, हर ज़माने की बुराइयाँ मुख्तलिफ हैं, हर ज़माने की बुराई की शक्ल मुख्तलिफ है, हर ज़माने की बुत परस्ती मुख्तलिफ है। पहले लोग पूजते थे वो पत्थर के बुतों को, वो जब इस्लाम आया था, ठीक है जी, आज वो बुत बदल गए। हर इंसान अगर गैर खुदा किसी का आशिक है ना, तो वो प्रॉब्लम में है, यानी उसका उसका माबूद कोई और है। हर इंसान का इम्तिहान जो है ना, वो मैं बाज़ को नौजवानों को समझाता हूँ कि आज भी बुत परस्ती मौजूद है, आइडल वर्शिप मौजूद है अभी भी, लेकिन वो कैसे है? मसलन किसी आदमी को झूठ बोलना उसकी तबीयत में है, उसको वो रह नहीं सकता जब तक झूठ ना बोले। इसका मतलब उसका माबूद वो झूठ है। किसी आदमी को मतलब क्या कहते हैं, दूसरों को तंग करके बड़ा मज़ा आता है, इसका मतलब है वो अल्लाह की इबादत नहीं करता। इमाम चाहते हैं अनहा अनिल मुनकर, बुराइयां ना रहें। नमाज कब कायम होगी? जब बुराई ख़त्म हो जाएगी। हज कब कायम होगा? जब बुराई नहीं रहेगी। इस्लाम का इक्तिसादी निज़ाम बहसियत खुम्स हो ज़कात हो कायम कब होगा? जब मुआशरे में इन इखलाकी बुराइयों का खात्मा हो जाए। दोनों काम है इकट्ठे, युअल्लिमहुमुल किताब वल हिकमा, युज़क्कीहिम व युअल्लिमहुमुल किताब, नॉलेज प्लस प्योरिफिकेशन। ऐसा नहीं है कि खाली इखलाक ठीक करते जाओ और दुनिया के मामलात से दूर हो जाओ, नहीं, इल्म हासिल ना करो मसलन, नहीं, इल्म इस्लाह ज़ात, रूह की परवरिश, अफकार की परवरिश, अकायद की परवरिश, तसव्वुरात की परवरिश, पाकीज़गी, और उसके साथ साथ जो है वो इल्म का हुसूल है। तो तीन नुक्ते हो गए,
बिल्कुल,
एक इस्लाह हो गया, एक नेकियों की हाकमियत हो गई, और
एक
एक
बुराइयों
बुराइयों का
का
खात्मा हो
खात्मा।
गया। अगरचे बाब मुफस्सल है, आगे क्या फरमाया? असीर बसीरत जद्दी सलावातुल्लाह सलामुल्लाह, मैं चाहता हूँ अपने जद की सीरत पे अमल करूँ। क्या इमाम चाहते हैं एक दफ़ा फिर पैगंबर का तारुफ करवाएं, एक दफ़ा फिर मुस्तफ़ा की सीरत को ज़िंदा करें कि मुसलमानों क्या हो गया तुमने, तुम्हें आया सीरत मुस्तफ़ा ये थी, आया मुस्तफ़ा ने फासिकों की बैत की, आया मुस्तफ़ा की सीरत ये थी, मुस्तफ़ा ने कैसी हुकूमत कायम की थी मेरे जद ने मदीने में, आदिल आलिम पाकीज़ा, जुल्म से पाक, खुदा की हिदायत का मरकज़ मेरे जद की सीरत तैयबा ये थी। इसका मतलब है जद को लोग भूल चुके थे, तो सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम ने अपनी कुर्बानी से अपने जद बुजुर्गवार की सीरत और उनकी शख्सियत को एक दफ़ा फिर दुनिया वालों के सामने आश्कार किया और दुनिया को समझाया कि हुसैन मिन्नी माना मिनल हुसैन का माना क्या है जी। और मैं मुख्तसर करता हूँ और आगे क्या फरमाया, व अबी अली इब्ने अबी तालिब, मेरे बाबा अली इब्ने अबी तालिब की सीरत क्या थी। इन दो की शख्सियात का तारुफ करवाना चाहता हूँ। क़याम का मकसद मुस्तफ़ा की सीरत का तारुफ है और अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम की सीरत को ज़िंदा करना है।
अल्लाह
ये खूबसूरत बातें। नबी और अली के अलावा कौन था जो जो, जो जिसने दीन की कुव्वत को सरबुलंद किया और सरफराज किया दीन के आलम को। आज वो आलम झुका हुआ है, हुसैन ने महसूस किया कि ज़रूरत है कि मैं इस आलम को सीधा करने के लिए अपने अली अकबर की कुर्बानी दूँ। इस दीन को ये इसकी जड़ें खुश्क हो जाएंगी, इसको ज़रूरत है कि मेरा खून जाए और सैराब करे ताकि ये दीन फले फूले जवान हो। अगर हुसैन चाहते तलवार उठाते तो उठा सकते थे। क्या बनी हाशिम को तलवार चलानी नहीं आती थी। सीखो, सुनो, देखो, अल्लाह के मुखालिफ कितने लोग हैं, कितने दुनिया में बहुत हैं
बहुत काफी लोग
जी। अल्लाह कहे कि मैं तुम्हारा गाटा उतारता हूँ अभी, नहीं। अगर तलवार चलाना होती तो करबला मकसूद न थी। तलवार चलाना होती तो इमाम अपनी कुव्वतों को जमा करते, अगर तलवार चलाना मकसूद थी। इमाम ने अपनी कुव्वतों को बखेरा है। जनाब मुस्लिम जैसा शुजा कूफा में शहीद हुआ। हज़रत अब्बास की जंग कौन है दुनिया जो नहीं जानती थी। सैयद शुहदा ने जंग करने वाली कुव्वतों को समेटा नहीं। अगर जंग करते तो उम्मत बाकी ना रहती। इकबाल ने खूबसूरत पैराए में एक बात बयान की है, शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, ना माले गनीमत ना किश्वर
किश्वर
कुशाई।
कुशाई
अम्बिया ना माले गनीमत के लिए आए थे ना किश्वर कुशाई के
कुशाई के
लिए
लिए
आए
आए थे।
थे। शहादत से मुराद वो लिखा है परवरदिगार है, अल्लाह की मुलाकात है, खुदावंद आलम पे ईमान है। जो असल इशारा है वो इस बात की तरफ है जी।
बिल्कुल
इन्हीं अम्बिया के इमाम हुसैन के एजेंडे में किश्वर कुशाई माले गनीमत नहीं शामिल। ये अभी जो मैंने अभी अर्ज किया, तलावत किया है इमाम अलैहिस्सलाम का कौल कि परवरदिगार तू जानता है कि हम कुदरत के ख्वाहिशमंद नहीं हैं, हम कोई इक्तदार की ख्वाहिश नहीं रखते। तो ये वो पांच निकाती एजेंडा है जो दीन की तमाम तर, ये वसीयतनामा इमाम के दीन जो है ना, वसीयतनामा सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम का, और इससे ज़्यादा ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट हमें इस क़याम के हवाले से मसलन अगर आप देखें
बिल्कुल
तो वो वसीयतनामा है, इंतहाई तौसीक शुदा डॉक्यूमेंट है जो सैयद शुहदा ने अपने दस्त मुबारक से तहरीर फरमाया कि
अल्लाहु अकबर।
ये मेरे क़याम का मकसद ये है। और दीन के सारे चैप्टर जो है वो खोल खोल के बयान किए, तौहीद, रिसालत, क़यामत, और ये प्रैक्टिकल एजेंडा जो है वो सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम ने इस जो है वो वसीयतनामे में बयान फरमाया है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि दीन का कोई ऐसा बाब नहीं है जिसको इमाम अलैहिस्सलाम के इस क़याम में हम मुशाहिदा ना करें। मेरा इजमाली ईमान इजमाली तौर पे मैं ये समझता हूँ कि बल्कि इसको यूँ कहा जाए कि करबला अपने वजूद में कामिल दीन का बाब है, कामिल दीन है। دین کی تمام تر حقیقتوں کو کربلا میں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو جس اینگل سے بھی دیکھیں گے کربلا کو آپ دیکھیں گے اسوہ کامل ہے.
بالکل
دین کے ہر چیپٹر میں کربلا آپ کو اسوہ کامل نظر آئے گا. صرف دیکھنے والی نظر چاہیے کہ آپ دین کے کن کن چیپٹرز کو, اب مثلا فرض کریں یہ توحید جو کہ حقیقت ہے, دین کی تمام تر حقیقتوں میں جو بالا تر حقیقت ہے وہ اللہ کی توحید ہے, اللہ کی وحدانیت ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اللہ کی وحدانیت کا اصل سبق ہمیں کہاں سے ملتا ہے, در حسین سے. اللہ اکبر. یہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ہم زیارت پڑھتے ہیں, السلام علیک یا ثار اللہ وابن ثارہ, اے سار اللہ اور اس کا بیٹا جو سار اللہ ہے.
اللہ
دونوں سار اللہ ہیں, حسین بھی سار اللہ اور حسین کا بابا علی بھی سار اللہ. آپ بھی سار اللہ ہیں, آپ کا بابا بھی سار اللہ ہے. خوب, یہ دونوں سار اللہ ہیں کس معنی میں؟ کہ دین کی رگوں میں دوڑنے والا خون حسین اور علی کا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دونوں نے عبودیت کی اس حالت میں جان دی ہے کہ جو بندگی کی معراج ہے اور وہ سجدہ ہے.
اللہ اکبر.
امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ نے حالت سجدے میں خدا کی بارگاہ میں دے دیا جو کچھ دینا تھا, اور فرزند علی نے بھی میدان کربلا میں سجدے کی حالت میں, آپ ذرا غور کریں, حالت سجدے کی ہو, ایک طرف ابن ملجم جیسا شقی ہو, اشق الاولین والآخرین, اشق الآخرین کا مستاق, اشق الآخرین پیغمبر نے فرمایا کون ہے؟ امیر المومنین علیہ السلام بارگاہ پیغمبر میں ایک دفعہ بیٹھے تھے تو پوچھا کہ یا علی کون ہے جو سابقہ امتوں میں سب سے زیادہ شقی تھا؟ عرض کیا یا رسول اللہ قیدار بن سالف, جس نے حضرت صالح کی اونٹنی کی کونچیں کاٹی تھی, اللہ کی نشانی کی کونچیں کاٹ دی. آیت اللہ.
بالکل,
حضرت صالح کی اونٹنی خدا کی نشانی, آیت خدا تھی, علی آیت کبریٰ ہے اللہ کی. جی, فرمایا کہ یا علی آخری امتوں میں سے کون ہے جو سب سے زیادہ شقی ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ, فرمائے, کہتے ہیں پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا یا علی وہ جو آپ کے سرے, آپ کے فرق پر, آپ کے سر مبارک پہ ضرب لگائے گا, شقی ترین شخص ابن ملجم, اور اس طرف کربلا میں خبیث ترین انسان اس دھرتی کا شمر, جس نے امام حسین کے سر اقدس پہ لگائی, ضرب لگائی, کاٹا وہ گلا, کس حالت میں؟ دونوں کی حالت سجدے کی ہے, گردن پہ خنجر ہو, سر پہ خنجر ہو, اور زبان پہ سبحان ربی الاعلی وبحمدہ, اللہ کی توحید, خدا کی وحدانیت کا اقرار. ایسی توحید کوئی لائے تو صحیح کہیں, ایسی وحدانیت کا اقرار, خدا کی تسبیح اس حالت میں کہ انسان جو ہے وہ تہ خنجر ہو اور خدا کی حمد و ثنا میں مشغول ہو. سلام ہو حسین پر,
سلام
سلام ہو حسین کے بابا پر, سلام ہو ان ہستیوں پر جنہوں نے اپنی ہر چیز دے کر اللہ کے دین کو سربلند کیا.
اور جو ہم نے پانچ جو ہم نے نکات بیان کیے, ان کی وجہ سے, ان کو ان کے احیاء کی وجہ سے تمام اپنے خاندان کی قربانی پیش کی.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
ناظرین, آپ نے گفتگو سنی امام حسین علیہ السلام کے قیام کے حوالے سے کہ ان کا مقصد کیا تھا. مولانا نے بڑے احسن طریقے سے امام حسین علیہ السلام کی وصیت کو آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ کس طرح امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں, میں معروف کا احیاء چاہتا ہوں, برائیوں سے خاتمہ چاہتا ہوں, اور اپنے جد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے بابا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت ان کو زندہ کرنا چاہتا ہوں, اور چاہتا ہوں کہ لوگ اس پہ عمل کریں. یہ مقاصد تھے امام حسین علیہ السلام کے قیام کے. امید ہے کہ آپ نے یہ پروگرام کو پسند کیا ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. مولانا نجم الحسن نقوی صاحب کا بھی شکریہ کہ انہوں نے ہمارے لیے نہایت قیمتی وقت نکالا. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.